सारा जगत कल्पित है, भावना मात्र है, कल्पना मात्र है, जैसा सोचते हो ऐसा ही दिखता है। क्योंकि जगत के मूल में शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है और उसी की आलादनी शक्ति से ये जगत का विस्तार हुआ है। तो इतना सूक्ष्म और मल्टीपर्पज है कि उसमें जैसा भी बनाओ तो भावना वैसे ही देखता है। उसी परमात्मा की सत्ता से प्रकृति और प्रकृति के त्रिगुणों से पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार ये उत्पन्न हुआ। इसलिए इन भूतों में भी जैसा घुमावा करो तो घूम जाता है और मन में भी जैसा सोचो ऐसा सच्चा हो भासता है, क्योंकि सत्य से निकला है। जैसे सोने में से जैसा भी जेवर बनाओ बन जाता है, मिट्टी में से जैसा भी शकोरा सुराई बनाओ बन जाता है। मूल रो मटेरियल ऐसा है कि बहुत सारे खिलौने बन सकते हैं। सोना रो मटेरियल ऐसा है कि बहुत सारे गहने बन सकते हैं। सूत रो मटेरियल, रुई रो मटेरियल ऐसा है कि बहुत प्रकार का कपड़ा बन जाता है। कपड़ा ऐसा है कि बहुत प्रकार के पैजामे और कुर्ते और ये और वो सब बन जाता है। तो वास्तव में परब्रह्म परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त है। उस परमात्मा की घन सुषुप्त अवस्था ये पहाड़ पत्थर आदि में उसका अस्तित्व मौजूद है। पत्थर को पहाड़ को तोड़ो, राई जितने बालू के कण को तोड़ो पीसो, उसका कण कण हो जाएगा, आंखों से ओझल हो जाएगा, फिर भी कहीं न कहीं उसका अस्तित्व रहेगा। ठीक है, ये परमात्मा की सत्यता पत्थर पहाड़ में भी देख सकते बुद्धिपूर्वक। परमात्मा चेतन है, कीड़ी मकोड़े बैक्टीरिया में भी उसकी चेतनता दिखती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो संस्कारी अंतःकरण में परमात्मा का सुख झलकता है। साधारण व्यक्ति के कुत्ते के हृदय में भी सुख झलकता है, इसलिए पूंछ हिलाता है, करता है, कूदता है। लेकिन वो सुख का शुद्ध रूप छलकाना है तो हृदय को शुद्ध बनाना पड़ता है। शुद्ध हृदय कैसे बनता है कि शुद्ध ज्ञान से हृदय शुद्ध बन जाता है। सांख्यवादी कहते हैं कि संसार दुखमय है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो संसार असत है, जड़ है और दुख रूप है, क्योंकि पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी भी नहीं की तरफ जा रहा है। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप नहीं, ईश्वर की माया है, खेल है। और भक्त बोलते हैं संसार भगवानमय है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ है तो भगवतमय है। विचारवान बोलते हैं संसार दुखमय है, दुखालय, ये भी शास्त्र है। और हरि रेवा जगत है, ये भी शास्त्र और महापुरुषों के वचन है। तो दोनों में से सच्चे कौन से? जगत दुख रूप है, ये बात भी दिखती है, दुख ही दुख, इतना कुछ करो फिर भी दुख ही दुख। भगवान जगत भगवत स्वरूप है, ये बात भी शास्त्रीय है कि सबकी गहराई में तो भगवान की चेतना है। तो दोनों दृष्टि से दोनों बात सच्ची है। अगर जगत से मजा लेने की इच्छा है, जगत की वस्तुएं इकट्ठी करके सुखी होने के रास्ते चलता है, उसको दुख मिलता है, क्योंकि सारी वस्तु मनपसंद इकट्ठी होगी नहीं, होगी तो संभलेगी नहीं, संभली तो भोगी नहीं जाएगी, और भोगी तो शरीर ठूस हो जाएगा, दुख ही दुख मिला। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं अमेरिका में, ये भोग का ही तो फल है। स्नायु रोग से पीड़ा मतलब किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को कुछ, रगों में ताकत कम, वो एनर्जी ज्यादा नाश हो जाती है ना, संभोग से अथवा संभोग के विचार करने से, ऐसे चित्र देखने से वो जो वीर्य है, धातु है, ऊर्जा है, वो क्षीण हो जाती, तो रगों की कमजोरी का रोग लागू पड़ जाता है। धीरे धीरे शुरुआती होता है तो पता नहीं चलता, जब एकदम बढ़ जाता है तो पता चलता। शुरुआती कैंसर का तो लेबोरेटरी वालों को भी पता नहीं चलता, कैंसर शुरुआती कैंसर का, वो जब बढ़ती है तब पता चलता। शुरुआत होती है फिर बढ़ चलती है तब दिखती है लेबोरेटरी। कई ऐसे लोग आते हैं जो वैद्य बोलता है कि इसको ये कैंसर के, ये कौन इसके कैंसर के, लेबोरेटरी में देखा तो नहीं है, बाद में एकाएक डॉक्टर ने बोला कि हाँ तुमको कैंसर सारे शरीर में हो गया। भाई हर 15 दिन तो हम चेक करते थे, आप चेक करते थे हमको? आप बोले उस समय तो नहीं देखता था, अभी पूरे शरीर में। तो मशीनों का ज्ञान अपना है, मनुष्य ही सात्विक बुद्धि का ज्ञान अपना है, लेकिन ये ज्ञान जो है मशीनों का ज्ञान नहीं है, राजसी तामसी बुद्धि का नहीं है, सात्विक बुद्धि नहीं, सारी बुद्धियों का उद्गम स्थान का ज्ञान है, तत्व ज्ञान। जय राम जी की। जो तत्व ज्ञान में है टिक जाते योग सामर्थ्य में, वो ऐसे अद्भुत त्रिकालज्ञ हो जाते हैं कि आपको क्या बताएं। परीक्षत की मृत्यु हो गई तक्षक के काटने से, और राजा जन्मे जय उसका पुत्र राजा बना। पिताजी मरते समय कथा सुनी, कथा में सार है तो हम अभी से कथा सुने। कथा सुनते सुनते जन्मे जय के मन में महाभारत के प्रसंग के प्रति शंका हो गई कि ये कैसे हो सकता है। कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध करना, भीष्म भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, और फिर भी युद्ध हो गया, ये बात पूछिए नाटक क्या होगा। युद्ध अगर थामना चाहे तो साम दाम दंड भेद से युद्ध थम सकता था। तो कथा करने वाले ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो अवश्यम भावी होता है वो हो के ही रहता है। बोले बात हम नहीं मानते, भगवान वेद व्यास के पास गए। बोला ये महाभारत में शास्त्र में बात है कि कृष्ण युद्ध रोकना चाहते थे और फिर भी हो गया युद्ध, ये मेरे को बात समझ में नहीं आती, ये बात मैं मानता नहीं, मुझे विश्वास नहीं। तो व्यास जी ने कहा अच्छा जन्मेजय देख, होनी 3 प्रकार की होती है, एक साधारण, दूसरी मध्य और तीसरी तरतीव्र। साधारण, तीव्र और तरतीव्र। तो साधारण होने को पुरुषार्थ से बदला जा सकता है, तीव्र को भी बदला जा सकता है, तीव्र तो होके रहती। बोले महाराज क्या तरतीव्र है इसमें, क्या युद्ध कृष्ण चाहते तो टल सकता था, भीष्म जैसे लोग नहीं चाहते थे, कृष्ण नहीं चाहते थे, फिर भी युद्ध हुआ। तो व्यास जी मुस्कुराए, बोले अच्छा जन्मेजय तेरा क्या होने वाला है मैं बताता हूं, अब तू उसको टाल सके तो टाल के दिखा। आज आज की तिथि, आज की तारीख बराबर 1 साल के बाद तू काले घोड़े पे मत बैठना, लेकिन तू काले घोड़े पे बैठेगा। काले घोड़े पे बैठे तो बैठे, लेकिन फिर जंगल के तरफ या घोड़ा जहां ले भागे वहां मत जाना, तू जाएगा। वहां जाए तो जाए, लेकिन सरोवर के किनारे मत जाना, लेकिन तू जाएगा। वहां एक सुंदरी बैठी होगी तुझसे बात करेगी, तू बात मत करना, लेकिन तू बात करेगा। और बात करेगा तो करेगा, लेकिन उसको साथ में घोड़े पर मत लाना, लेकिन तू लाएगा। लाए तो लाए, लेकिन जल्दबाजी से विवाह मत रचना उसके साथ, लेकिन तू रचेगा। रचे तो रचे, लेकिन सिखड़ ब्राह्मणों के द्वारा विवाह मत करना, बुजुर्ग ब्राह्मण नहीं मिले तो रुक जाना, लेकिन तू रुकेगा नहीं। फिर उसमें तेरी हंसी होगी तेरी औरत की, तो ब्राह्मणों का हंसी सुन लेना, तू तलवार नहीं निकालना, लेकिन तू तलवार निकालेगा। और ब्रह्म हत्या होगी और तुझे कोढ़ की बीमारी होगी, वो पत्नी तो चली जाएगी, दासियां भी तेरे नजीक नहीं आएगी, ऐसी बदबू निकलेगी शरीर से, अभी चेकअप करा ले कुछ भी नहीं है। जयराम जी की, अभी तो कुछ भी नहीं है, नाड़ियों की बीमारी डॉक्टर बोलेंगे नहीं है, पैरालाइज की बीमारी का कोई खतरा नहीं है डॉक्टर अभी बोलेंगे, यू नो, लेकिन जिनको देखता है वो बोलते हैं कि खतरा है, यू नो, जयराम जी की, वो तुम्हारे हितेशी हैं, तुम्हारा बहुत दूर का देख सकते हैं। जयराम जी की। उसने बोला महाराज एक साल के बाद घोड़े पे नहीं बैठना है, काले घोड़े पर, और बैठूंगा तो फिर ऐसा होगा, लो ये गांठ मानता हूं, मैं भक्तराज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, महाराज ए लो काले क्या गोरे घोड़े पे भी नहीं बैठूंगा, ए गांठ बांध लो। दिन बीतते चले गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 हो गए, 12 महीने बस होने वाले ही थे, खुजली हुई सिर में, बोले अब तो अगले साल गए थे, अगले साल जेठ महीने में गए थे, और ये जेठ महीना तो पूरा हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को तो। अब पता नहीं कि जेठ महीने की जो तिथि है नौम तिथि, वो दूसरे साल की नौम तिथि में 10 दिन का फर्क पड़ जाता है, हर साल में 10 दिन का फर्क पड़ता तो पुरुषोत्तम मास आता है, वो फलानी तिथि थी आज फलानी तिथि लगी, खुजली यार चलो घोड़े पे बैठना है, चलो एक दो दिन और बैठेंगे, बाद में बैठेंगे, चलो फलानी तिथि गए थे सातम को, आज सातम है पूरा हो गया साल, आठम को भी नहीं बैठे, नवम को बैठते। लाओ जरा घोड़ा, तो दूसरे घोड़े तो बस्थल में इधर उधर सैर करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए कैसे गए थे, काला घोड़ा आया नया बस क्लास, चौंके कि काले घोड़े पर नहीं बैठना ही, काला ही आया है, यू नो चलो बैठे तो बैठे, लेकिन ललना को नहीं लाएंगे और क्या है, बैठे सरोवर नहीं जाएंगे, सरोवर भी गए, ललना बैठी बातचीत कर लेते, लाएंगे नहीं, बातचीत कर लिया, चलो घोड़े पे बिठाना नहीं, बिठाओगे चलो बिठा देते, शादी नहीं रचेंगे, ऐसा करके घर तक ले आए। अब उस ललना का हाव भाव और नाज नखरे, और जुहान जन्मे जय चुप कैसे बैठे, तो ललना ने कहा पहले फेरे फिरो बाद में नचिकाओ, और उस समय धर्म मर्यादा को राजा लोग भी मानते थे। विवाह रचना था, गांव के ब्राह्मण चले गए थे, पास में कोई महान पुरुष आए थे, उनके यहाँ 7 दिन की सप्ताह चल रही थी, सब कथा में चले गए थे ब्राह्मण लोग। अब क्या करें, बोले ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मण के बेटे भी तो ब्राह्मण होते हैं, जल्दी लाओ ब्राह्मण के बेटों को ही लाओ, बुजुर्ग ब्राह्मणों के सिवा याद शादी नहीं करना, लेकिन तू करेगा, यू नो। ओ रंगरूट ब्राह्मणों ने छोरे जो हा हा हु वाले थे उनको बुला के शादी रची, शादी रची तो दुल्हन का होता है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा में परोसे दुल्हन अपना, तो दुल्हन परोसने गई लड्डू वड्डू, तो हवा का झोंका आया और लाल दुपट्टा मलमल का उड़ गया, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल पट्टा मलमल का, हो जी सर 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 हवा चले मेरा घूंघट झटमट घोले, यू नो देखा नहीं लेकिन सुना तो जरूर है ना। दुपट्टा चला गया तो वो जो छोरे थे ओए 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 ये रानी ओए 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 रंगरूट छोरे थे, तो जन्म जय राजा था क्षत्रिय था, वो इंसल्ट कैसे सहे, उसका खून उखला, निकाली तलवार और 21 के 21 रंगरूट जो छोरे थे नारियल बधेर दिए, नारियल ये ऊपर का खोपड़ा होता है, उसके पाप का प्रभाव पड़ा कि अनिद्रा, राज्य के तरफ से ब्राह्मणों की बद्दुआएं, नालत, बड़े आदमी की तो बेइज्जती ही उसके लिए मौत हो जाती, नींद हराम हो गई, कोढ़ की बीमारी हुई, ललना तो चली गई, दासी भी नहीं आती थी नजीक। आखिर व्यास जी के पास गया कि महाराज आपने रोका था लेकिन अब मुझे समझ में आया, यू नो कि अवश्यम भावी भी होती है शास्त्र की बात, भले अभी कुछ दिखता नहीं लेकिन महापुरुष जो देख रहे हैं वो होनी को भी देख सकते, तो उसमें वो जब मार्गदर्शन दे तो समझ के करना चाहिए ताकि शूली में से कांटा हो जाए, टल जाए मुसीबत। वो क्यों देखते कि अब अपना सेवक है अपना काम कर रहा है तो इसका काम अपन पहले से चेकअप करो, जैसे माता पिता बेटे का ख्याल रखते हैं ऐसे गुरु लोग भी, कभी सपने में तो कभी जागृत में तो कभी कैसे प्रेरणा देके हमको बहुत सारी मुसीबतों से सुरक्षित कर देते बचा देते, तरतीब होता है तो फिर थोड़ा प्रसार कर देते वहां से। व्यास ने कहा भाई देखो अब तो मेरे पास समय नहीं है, मेरा नाम लेकर मेरे शिष्य को वैशंपायन जी को बोलना, वो तुम्हें कथा सुनाएगा। और कथा में दोष मत निकालना शास्त्र में। तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती तो चुप करके बैठना। ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारी अपनी बुद्धि से ब्रह्मज्ञानी को और ब्रह्मज्ञान के शास्त्र को तोलने की तुम्हारी ताकत नहीं। तो तुम उसके लिए कुछ बोलते तो पाप चढ़ता है तुम्हारे को। जो कुछ कथा है, शास्त्र की बात है, आप सुनते जाना, लेकिन ये झूठी है। शास्त्र में झूठे बने का आरोप मत करना। तो जो जो तुम कथा सुनते जाओगे तो सत्संग सुनने का पुण्य प्रभाव तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तो पाप निवृत्त होता जाएगा। पाप निवृत्त होते ही तुम्हारी अशांति कम होती चली जाएगी। यू नो, जो जो आप सत्संग सुनते, आपका ये अनुभव है कि नहीं है? जो जो आप सत्संग सुनते हैं, शुभ करते हैं, तो शुभ बढ़ता जाता है, तो आपकी अशांति भी कम होती जाती है और बीमारी भी कम होती जाती है। स्वास्थ्य लाभ, यश लाभ होता है, सत्संग का पुण्य है। मन को शुद्ध करना और एकाग्र करना सत्संग श्रवण जैसा दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि सुनने में परिश्रम तो संत को पड़ता है, लेकिन फायदा श्रोताओं को फूल हो जाता है। बोलने वाले को परिश्रम, सुनने वाले को तो क्या है। हाँ जी महाराज, तो तुम हाँ जी महाराज करते हुए सुनते जाइयो, लेकिन जन्मे जाए सिर से लेकर शिखा से लेकर कमर तक का कोड़ तो मिटेगा, कमर से लेकर घुटने तक का तो कोड़ मिटेगा, दाएं घुटने का भी मिटेगा, लेकिन बायां घुटने तक का कोड़ बाकी रहेगा। इतने में तुमको शास्त्र और संत के प्रति अविश्वास हो जाएगा, यू नो, तो तुम्हारी गाड़ी फिर तुम रिवर्स में ले जाओगे। तुम जाना नहीं चाहते रिवर्स में, लेकिन वातावरण ऐसा बनेगा, लोग तुम्हें बहकाएंगे, अथवा तुम्हारा मन भी तुमको बहका देगा कि यार कहां फंसे यार, फालतू आ गए। यू नो, अपना स्वतंत्र खाते थे, पीते थे, पेग पीते थे, मौज करते थे, अब कहां ही बंधन में आ गए। तुम्हारा मन भी तुमको कभी बहकाएगा और तुम्हारे दोस्त भी तुमको बहकाएंगे। तो तुम्हारा मन बहकाएगा और फिर तुम शंका करोगे संत और शास्त्र पर, तो बाकी का कोर तुम्हारा रह जाएगा। बोले महाराज, इतना धोखा खाया, अभी पूरा शरीर में कोढ़ है, अब हम शास्त्र की बात नहीं काटेंगे, मानेंगे। बोले माने तो ठीक है, अटूट श्रद्धा रखेंगे। बोले अच्छी बात है, लेकिन देखना कहीं 80% फायदा लेकर 20% में कहीं रुक न जाना। महाराज आपकी कृपा होगी। वैशंपायन जी को गुरु जी की चिट्ठी दिखाई, वैशंपायन जी ने समय निकाल के कथा चालू की। किसके बेटा कथा सुन रहा है? कि परीक्षित राजा का बेटा, जिसकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, वो परीक्षित भक्त था। इतना पांडवों का पोता का बेटा, पांडव परीक्षित को राज्य दे गए थे और परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को दिया। तो ऐसा जन्मेजय कथा सुनते 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 जब महाभारत युद्ध का प्रसंग आया कि वायु पुत्र भीम को पायमान हुए और युद्ध के मैदान में जैसे अरण्य में शेर प्रवेश करे और सब को धाड़ता हुआ चपेट में ले ले, ऐसे भीम ने युद्ध में प्रवेश किया, दुर्योधन के हाथियों को पकड़ के सूंड से ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया कि जैसे बच्चा घुमा के लट्टू को फेंकता है धरती पे, ऐसे उन्होंने घुमाकर उन हाथियों को पेस में फेंक दिया। और इतना जोर से फेंका कि गुरुत्वाकर्षण नियम के पार हाथी चले गए और अभी भी वहीं घूम रहे। जन्मेजय बोलता है, महाराज हद हो गई, ये तो एकदम सफेद झूठ। दो पैर वाला भीम और चार पैर वाले हाथी को सूंड से पकड़े, यू नो, घुमा घुमा के ऐसा घुमाए, ऐसा घुमाए, ऐसा घुमा घुमा के ऐसा फेंके कि वो गुरुत्वाकर्षण नियम के पार चले गए और हाथी अभी तक घूम रहे। महाराज अब मैं श्रद्धा तो करता हूं, लेकिन एकदम ऐसा तो मुझे पटाने की बात तो मत करो, यू नो। मेरे को घोड़ उतारना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि तो नहीं मानती ना महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? तो व्यास जी योग सामर्थ्य से संपन्न थे, उनका शिष्य भी ऐसे ही था। जनमेजय को कथा सुनाने वाला वैशंपायन, आपका प्राण समष्टि प्राण से मिला है, प्राण सूक्ष्म हो तो योगी चांद सितारों और नक्षत्रों को अपने स्थान से हिला सकता है या स्थिर कर सकता है, ऐसा योग की महिमा जानने वाले बोलते हैं। विवेकानंद के लेख में भी ऐसा आता है, बड़ा अद्भुत सामर्थ्य है उस चैतन्य का। लेकिन नहीं है, नहीं है तो नहीं दिखेगा, है और यात्रा करोगे तो अनुभव में आएगा। जन्मेजय का प्राण सूक्ष्म सूक्ष्मतर साधना हो गई थी, मेरी उतनी नहीं है, सच्ची बात, थोड़ी सी मैंने की और बड़े चमत्कार देखे मैंने, फिर लोग संपर्क में आ गया और मेरी साधना छूट गई। जन्मेजय ने ऐसी की थी, जन्मेजय ने नहीं, वैशंपायन जी ने प्राण शक्ति की धारणा करके, हाथियों का सुमरण करके, उन झुंड हाथी जो भेजे गए थे उसमें से एक हाथी को चल, तो हाथी आया गिरा धरती पे। भीम के जमाने का भेजा हुआ हाथी वैशंपायन ने योग शक्ति से धरती पे गिराया। जन्मेजय को कहा कि मूर्ख, अब तो मानेगा, ये तेरा बाप सामने खड़ा है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल? आज का विज्ञान ने तरक्की किया, उससे बहुत भारी तरक्की आपका भारतीय विज्ञान कर चुका है, लेकिन मानता है कि आखिर ये भी परमात्मा को जाने बिना ये भी व्यर्थ है।